नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही विचार जगाने वाले उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान।
एक विज्ञान,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मतलब जिसे हम भक्ति कहते हैं वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है, आरती या मंदिरों में जाना, या फिर इसका कोई गहरा पहलू भी है, कोई वैज्ञानिकता?
बिल्कुल, और यही इस उद्बोधन की खासियत है। पूज्य गुरुदेव यहाँ भक्ति को सिर्फ एक भावना या कुछ रीति रिवाजों तक मतलब सीमित नहीं रखते हैं। वो इसे एक व्यवस्थित दर्शन, एक फिलॉसफी और यहाँ तक कि एक विज्ञान, एक साइंस के तौर पर देखते हैं।
अच्छा, विज्ञान के तौर पर।
उनका जो सारा जोर है वो बाहरी कर्म कांडों पर उतना नहीं है जितना हमारे अपने भीतर बदलाव लाने पर, अपनी पात्रता मतलब ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने पर है। तो चलिए आज इसी गहन विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ जरूर। गुरुदेव ने शुरुआत में वो सीपों और चट्टानों का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंदें तो बरसती हैं, पर मोती वो तो उन्हीं सीपों में बनता है जिनका मुंह खुला हो।
हाँ, और जिनमें वो क्षमता हो।
बिल्कुल। या जैसे बारिश चट्टान पर भी होती है, पर पानी कहाँ टिकता है? जहाँ थोड़ी मुलायमियत हो, जहाँ गड्ढे हो। तो इसका क्या मतलब निकाले हम?
ये है पात्रता का सिद्धांत, मतलब रिसेप्टिविटी या वर्दीनेस। पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ कर लेना या मान लीजिए घंटों कीर्तन कर लिया वो काफी नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि चिकनी चट्टान पर हजारों इंच बारिश भी हो जाए तो क्या ढास होगी?
नहीं होगी।
नहीं होगी, सही बात है।
तो ईश्वर की कृपा हो या किसी भी चीज का हमें लाभ पाना हो, पहले हमें अपने अंदर उसे ग्रहण करने की, उसे धारण करने की क्षमता विकसित करनी होगी। ये भाग्य या भगवान को दोष देने की बात नहीं है, ये खुद को तैयार करने की बात है। बादल तो बरस रहे हैं पर हमें अपना बर्तन तो सीधा रखना होगा ना,
है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, तैयारी हमारी तरफ से होनी है। ये बात समझ आई। लेकिन फिर ये जो इतना प्रचलित है नाच गाना, कीर्तन भजन या भगवान से लगातार कुछ ना कुछ मांगते रहना, जिसे अक्सर लोग मतलब भक्ति समझ लेते हैं, उसका क्या स्थान है फिर?
देखिए, पूज्य गुरुदेव इसे भक्ति का एक विकृत रूप मानते हैं, बिगड़ा हुआ रूप। वे बहुत साफ कहते हैं कि भगवान को हमारे नाच कूद या हमारी खुशामद में कोई रुचि नहीं है, न उनके पास इसके लिए समय है। वे भक्ति के नाम पर इस परावलंबन मतलब ये जो दूसरों पर निर्भर रहने की आदत है और ये जो भीख मांगने जैसी मानसिकता बन जाती है, इसकी बहुत कठोर आलोचना करते हैं।
कठोर आलोचना?
हाँ बहुत। यहां तक कि उनका एक बहुत तीखा, शायद चौंकाने वाला कथन है कि इस मामले में वे भिखारी से ज्यादा बेहतर चोर को मानते हैं।
क्या, चोर को बेहतर? ये तो बहुत ही कठोर बात लग रही है, ऐसा क्यों?
हाँ है कठोर सुनने में, पर इसके पीछे का तर्क गहरा है। वो ये कहते हैं कि चोर कम से कम जोखिम उठाता है, अपनी हिम्मत अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वो अपना स्वाभिमान पूरी तरह नहीं खोता।
अच्छा।
जबकि भिखारी जो सिर्फ मांगता है वो क्या करता है, वो अपना आत्मगौरव अपनी इज्जत वो सब खो देता है। तो भक्ति के नाम पर सिर्फ मांगना बिना खुद को योग्य बनाए, गुरुदेव को ये एक तरह की मानसिक गुलामी लगती है, आत्मगौरव का हनन लगता है।
समझ गई। ये दृष्टिकोण तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम भक्ति को कैसे देखते हैं। तो फिर अगर ये सब सच्ची भक्ति नहीं है तो असली भक्ति क्या है? आपने सुदामा का उदाहरण बताया था पहले।
बिल्कुल, सुदामा का दृष्टांत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, कृष्ण ने सुदामा से पहले क्या लिया था?
हाँ, वो पोटली ली थी, चावल की पोटली।
जी, यानी पहले देना हुआ, सुदामा ने पहले दिया।
हाँ।
फिर बदले में कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति का असली विज्ञान यही है, देना, प्रेम करना, स्नेह विकसित करना। जैसे हम जिससे प्रेम करते हैं उसे हम देना चाहते हैं ना।
हाँ, बिल्कुल।
उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो सच्ची भक्ति अपने अंदर प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग के भाव जगाने का एक सतत अभ्यास है। ये पत्थर जैसे कठोर दिल को पिघलाकर कोमल बनाने की प्रक्रिया है।
और ये उस क्षणिक भावावेश से अलग है, जैसे वो नशे में कीर्तन करने वालों का उदाहरण दिया था, उससे ये कैसे अलग है?
हाँ बिल्कुल अलग है। वो भावावेश, वो इमोशनल आउटबर्स्ट, वो तो क्षणिक होता है, टेम्पररी। जैसे नशा उतरा सब गायब। लेकिन सच्ची भक्ति एक स्थायी सिद्धांत है। ये जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें भावनाओं के साथ साथ विवेक और समझ भी शामिल है। ये अपने चरित्र को बदलने की साधना है, पात्रता बढ़ाने की साधना।
अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने अपने विचारों को और पुख्ता करने के लिए बौद्ध, जैन और वेदांत दर्शनों का भी जिक्र किया है, इसका क्या संदर्भ था?
हाँ, उन्होंने ये बताने के लिए इन दर्शनों का जिक्र किया कि महानता और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता जो है वो बाहरी देवी देवताओं की खुशामद या उन पर निर्भरता से नहीं मिलता,
अच्छा,
बल्कि वो मिलता है आंतरिक विकास से, सिद्धांतों पर चलने से। जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, उन्होंने ऐसे ईश्वर की अवधारणा को नहीं माना जो खुशामद से प्रसन्न होता हो, फिर भी वे स्वयं महान बने और उन्होंने समाज को बदला। आप देखिए, बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को बदल दिया, आम्रपाली को बदल दिया।
हाँ, ये तो है।
इसी तरह शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इसने आत्मा की आंतरिक दिव्यता पर जोर दिया, बाहरी परावलंबन को काटा, तो ये सब उदाहरण यही दिखाते हैं कि असली शक्ति पात्रता में है, आत्मसुपधार में है और सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे प्रेम, करुणा, सेवा, इनको जीने में है।
और वो स्लेव्स ऑफ द गॉड्स पुस्तक का जिक्र भी इसी संदर्भ में था शायद।
हाँ बिल्कुल, वो इसी मानसिक गुलामी पर एक तरह का व्यंग था। गुरुदेव ने बताया कि कैसे लोग देवी देवताओं के नाम पर छोटी छोटी बातों में, मुहूर्त, दिशाशूल, इसमें क्या करें, उसमें क्या ना करें, इसमें उलझकर अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता खो देते हैं, अपना विवेक खो देते हैं, मानो वे देवताओं के गुलाम हों, जबकि भक्ति का मार्ग तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का होना चाहिए।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को मतलब समेटे तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार भक्ति सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, रीति रिवाज या सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एक गहरा दर्शन है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। और इसका आधार क्या है? अपनी पात्रता का विकास करना, हृदय में सबके लिए प्रेम और करुणा जगाना, लेने के बजाय देने का भाव रखना और परावलंबन छोड़कर आत्मनिर्भर बनना। ये मूलतः अपने ऊपर काम करने की प्रक्रिया है, खुद को बेहतर बनाने की एक सतत प्रक्रिया। ये ईश्वर पर दबाव डालने या उनसे भीख मांगने की तकनीक बिल्कुल नहीं है।
हाँ, और अंत में शायद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि पूज्य गुरुदेव का भक्ति का ये जो वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये आज समाज में जो भक्ति के कई रूप प्रचलित हैं, उनको ये किस तरह की चुनौती देता है और व्यक्तिगत स्तर पर हम सबके लिए आत्म सुधार की क्या नई दिशा दे सकता है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।